सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा। नेताजी की रहस्यमय मृत्यु की शोधपूर्ण अंतरकथा। लेखक संजय श्रीवास्तव। अध्याय एक। आजाद हिंद फौज के खिलाफ जाते हालात। पीछे हटना पड़ा आजाद हिंद फौज को। जापान के समर्पण से नेताजी को धक्का। सुभाष भी करना चाहते थे अंग्रेजों के सामने समर्पण। किस तरह नेताजी ने लगातार मीटिंग की। वर्ष 1945, अप्रैल की जबरदस्त गर्मी और उमस। युद्ध के हालात जापान के खिलाफ जा रहे थे। आजाद हिंद फौज यानी आईएनए के लिए खबरें अच्छी नहीं थीं। बारिश, दलदल, खाद्य और रसद सभी खलनायक बने हुए थे। कोहिमा और इम्फाल में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज को हार का सामना करना पड़ा था। अगर आईएनए यहां विजयी हो जाती तो उसे कोई ताकत बंगाल और असम में बढ़ने से रोक नहीं सकती थी। भारत का हर शख्स तब अंग्रेजी शासकों के खिलाफ खड़ा हो जाता। आईएनए की विजय यात्रा के लिए दिल्ली का पथ अपने आप खुल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मूसलाधार बारिश, कीचड़, दलदल, रसद में अवरोध, खाद्य सामग्री और दवाइयों की कमी से आईएनए के सैनिक इतने त्रस्त हो गए कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। हैजा, दस्त और मलेरिया सैनिकों के लिए जानलेवा बन गए थे। इसके बाद भी सैनिक जल्दी स्वस्थ होकर लड़ाई के मैदान में फिर टूट पड़ने के लिए इच्छुक थे। अंग्रेज सेना आगे बढ़ रही थी। कुछ ही दिनों में यह रंगून पहुंचने वाली थी। नेताजी रंगून में रुके हुए थे। सवाल यह था कि नेताजी का अगला कदम क्या होगा। आजाद भारत की निर्वासित अस्थायी सरकार को इस बारे में कोई फैसला हर हाल में लेना था। रंगून में मौजूद आजाद हिंद सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य एकमत थे कि नेताजी को शत्रुओं के हाथ में नहीं आना है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ते हुए थाईलैंड, जावा, फिलीपीन और यहां तक कि जापान के सुदूर पूर्व में चले जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस इसके लिए तैयार नहीं थे। वो सैनिक साथियों के साथ रंगून में ही ठहरना चाहते थे। आखिरकार किसी तरह उन्हें राजी किया गया। 23 अप्रैल 1945 को रंगून में सूचना मिली कि अंग्रेज सेना मध्य बर्मा में पिनमाना तक पहुंच चुकी है। कुछ ही घंटों में बर्मा की राजधानी पहुंच जाएगी। नेताजी अब भी रंगून में थे। अगर वो अंग्रेज सेना के हाथ पड़ जाते तो बहुत अनर्थकारी होता। 24 अप्रैल की चांदनी रात में नेताजी के साथ सैन्य काफिला बैंकॉक की 21 दिनों की यात्रा पर निकला। ये बहुत कठिन यात्रा थी। वो सारी रात चलते थे। दिन में शत्रु के विमानों की निगाह में नहीं आए, इसलिए छिप जाते थे। सैनिकों को दिन में केवल एक बार भोजन मिलता था। 14 मई को काफिला बैंकॉक पहुंचा। पहुंचते ही नेताजी ने अपना काम शुरू कर दिया। बैंकॉक में उनके निवास पर मंत्रियों की नियमित बैठकें शुरू हो गईं। बातचीत इसी बिंदु पर होती थी कि अब आगे क्या करें। जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में हार चुका था। जापान के लिए अब लंबे समय तक अंग्रेजों और अमेरिका के खिलाफ युद्ध जारी रखना मुश्किल था। अगर जापान की हार हुई तो आईएनए का काम क्या होगा। वो आगे की लड़ाई कैसे जारी रखेंगे। क्या अब रूस से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए। क्या जापान इसमें मदद करेगा। क्या रूसी उनके प्रस्ताव को मानेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि अगर रूस से मदद लेनी है तो इसमें जापान की भूमिका ही अहम होगी। बोस ने रूस से संपर्क करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे रूस पहुंचकर उसकी मदद लेने की कोशिश करेंगे। वो जापान से उत्तरी चीन या मंचूरिया जाने की योजना बना रहे थे ताकि वहां से रूस की सरकार से संपर्क साध सकें।
Sample complete. Ready to continue?